मैं हूं विभूति शर्मा और आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार। 21 दिसंबर 2018 के हिंदी बुलेटिन में शामिल है। दुनिया भर में प्रवासियों के हालात और स्थानीय लोगों की चिंताओं को समझने की पुकार। लीबिया में प्रवासियों का हो रहा है बड़े पैमाने पर शोषण, सरकार की नाकामी के सबूत। अंतर्राष्ट्रीय सहायता राशि में कटौती की वजह से फिलिस्तीन में खाद्य असुरक्षा के हालात। लेबनान से इसराइल की तरफ जाने वाली सुरंगों का संकट सुलझाने के प्रयास। और कांगो गणराज्य में भुखमरी के कगार पर पहुंचे 50 लाख लोगों तक पहुंची खाद्य मदद। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन IOM ने बताया है कि साल 2018 के दौरान दुनिया भर में 3,400 प्रवासियों और शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज की मौत हो गई। संगठन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के मौके पर ये जानकारी दी। संगठन के महानिदेशक एंटोनियो वितोरिनो ने इस मौके पर दुनिया भर से अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की इज्जत करें और उनकी अस्मिता का सम्मान करें जिन्हें या तो किन्हीं मजबूरियों की वजह से अपना घर या स्थान छोड़ना पड़ता है या फिर ऐसे कुछ लोग बेहतर हालात की तलाश में अपने स्थानों से दूर जाते हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही उन लोगों के विचारों और चिंताओं को भी सुनने का ये सही मौका है जो प्रवासियों और शरणार्थियों की मौजूदगी से उनके जीवन में होने वाले परिवर्तनों को लेकर डरे हुए हैं। ध्यान रहे कि प्रवासियों और शरणार्थियों की तकलीफों और उनके बारे में मौजूद भ्रांतियों को दूर करने के लिए मराकेश मोरक्को में 10 दिसंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय समझ प्रणाली वजूद में आई है। इसका नाम है ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश प्रवासियों के मुद्दों को बेहतर समझ के जरिए आसान बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। IOM के डायरेक्टर जनरल एंटोनियो वितोरिनो ने जोर देकर कहा है कि इस चुनौती का सामना कोई भी एक देश सिर्फ अपने बूते पर नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया भर में इस समय करीब 25,80,00,000 प्रवासी मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त करीब 4 करोड़ प्रवासी वो लोग हैं जो संघर्षों और लड़ाई झगड़ों की वजह से अपने ही देशों में विस्थापित हो गए हैं। प्रवासी संगठन के प्रमुख का ये भी कहना था कि करीब 1,90,00,000 लोग पिछले साल जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुई मुसीबतों की वजह से बेघर हो गए थे। इस बीच जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने सदस्य देशों और कारोबार जगत से की गई उस अपील का स्वागत किया है जिसमें प्रवासियों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की पुकार लगाई गई है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सरकारी और कारोबार जगत से जोर देकर कहा गया है कि ऐसे प्रबंध किए जाएं जिनमें प्रवासियों के प्रयासों की बदौलत होने वाली आर्थिक प्रगति के फायदे उन्हें भी मिलें। साथ ही प्रवासियों को मानवाधिकारों के उल्लंघन और उन्हें शोषण से बचाने के भी ठोस इंतजाम किए जाने का आह्वान किया गया है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि दुनिया भर में अक्सर प्रवासी कामगारों के साथ रोजगार की प्रक्रियाओं में भेदभाव होता है। उनके कामकाज करने की शर्तें और हालात बहुत अच्छे नहीं होते और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं होती है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सदस्य देशों से ऐसी ठोस निगरानी व्यवस्था लागू करने का आह्वान किया जिससे रोजगार देने वाली कंपनियां प्रवासी कामगारों के शिनाख्ती दस्तावेज जब्त ना कर पाएं। साथ ही निजी क्षेत्र के रोजगारदाता भी ये सुनिश्चित करें कि प्रवासी कामगारों को कानूनी वैधता रखने वाले और न्याय संगत कॉन्ट्रैक्ट यानी दस्तावेज जारी किए जाएं। लीबिया में प्रवासियों और शरणार्थियों का बड़े पैमाने पर शोषण होने की खबरें आई हैं। देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि लीबिया में प्रवासियों और शरणार्थियों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। 20 महीनों के दौरान करीब 1,300 ऐसे लोगों से बातचीत की गई है जो इस तकलीफ के दौर से गुजरे हैं और उन्होंने प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ होने वाला अमानवीय बर्ताव खुद देखा है। इनमें वो लोग शामिल हैं जो लीबिया के उत्तरी इलाकों की तरफ अपने हालात में बेहतरी की उम्मीद के साथ सफ़र करते हैं। इनमें बहुत से तो किसी यूरोपीय देश में पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना भी संजोए होते हैं। रिपोर्ट का कहना है कि ये लोग जैसे ही लीबिया के दक्षिणी इलाके से उत्तरी इलाके में दाखिल होते हैं तो उनके लिए गंभीर खतरे शुरू हो जाते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे सबूत मिले हैं कि लीबिया सरकार के बहुत से अधिकारी हथियारबंद गुट, स्मगलर और तस्कर प्रवासियों और शरणार्थियों का भारी शोषण करते हैं और उनके साथ बहुत अमानवीय तरीके से पेश आते हैं। फिर भी लीबिया सरकार इस शोषण को रोकने के लिए या तो इच्छुक नजर नहीं आती है या फिर नाकाम रही है। इस ताज़ा रिपोर्ट को तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने इससे पहले 2016 में भी इस तरह के शोषण और गंभीर स्थिति को सुधारने के लिए लीबिया सरकार के सामने कुछ सिफारिशें रखी थीं, लेकिन लीबिया सरकार की तरफ से कोई प्रगति नहीं देखी गई। गौरतलब है कि लीबिया में कई वर्षों से राजनीतिक अशांति और हथियारबंद संघर्ष जारी रहने की वजह से देश में अराजकता जैसा माहौल है। कानून का शासन कमज़ोर होने की वजह से बहुत से संस्थान भी कमज़ोर हो गए हैं, जिससे इंसानों की तस्करी, उनसे जबरन धन वसूलना और सफ़र पर निकले लोगों को प्रताड़ित करने के बहुत से मामले देखे गए हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने कहा है कि फिलिस्तीन में वैसे तो हमेशा ही लोगों को खाद्य सहायता की आवश्यकता होती है, मगर अंतर्राष्ट्रीय सहायता राशि में कटौती किए जाने के बाद ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री की मात्रा में मजबूरन कमी की जा रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी के अंदाज में कहा है कि फिलिस्तीनियों के लिए सहायता राशि में कटौती से खाद्य सुरक्षा, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और उनके रहन सहन पर भारी नकारात्मक असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका गाजा है, जहां करीब 70% आबादी के पास समुचित मात्रा में खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और फिलिस्तीन के लिए डायरेक्टर स्टीफन कर्नी ने संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ बातचीत में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय धनराशि में कटौती किया जाना फिलिस्तीनियों के लिए किस तरह तबाही जैसे संकेत दे सकता है।
I want 57 million next year, 2019. That's what I want.
अगले साल के दौरान हमें करीब 57 अरब डॉलर की जरूरत होगी। हमारे पास अभी करीब 20 अरब डॉलर की रकम है। अगर हमारे पास 30 अरब डॉलर की कमी होगी तो इसका मतलब होगा कि करीब 1,50,000 लोगों को जीवित रहने के लिए समुचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा। गाजा और पश्चिमी तट में खाद्य असुरक्षा इसलिए नहीं है कि वहां खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसलिए खाद्य असुरक्षा है क्योंकि लोगों के पास खाने पीने का सामान खरीदने के लिए धन नहीं है। हमारे मानदंड अत्यंत गरीबी के स्तर पर निर्धारित हैं। विश्व बैंक ने इस देश में अत्यंत गरीबी का स्तर $3.70 प्रतिदिन की उपलब्धता और खर्च पर निर्धारित किया है। हमारी सहायता पर निर्भर ज़्यादातर आबादी इस रकम से भी कम पर गुजारा करती है। उनमें से अगर कुछ को रोज़गार मिल पाती है तो उनकी आमदनी करीब $1 प्रतिदिन होती है। स्टीफन कर्नी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि लेबनान से इसराइल की तरफ जाने वाली सुरंगें सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1701 का उल्लंघन करती हैं। इस प्रस्ताव में व्यवस्था है कि लेबनान और इसराइल के बीच निर्धारित ब्लू लाइन का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी जॉन पियर लेक्रॉ ने बुधवार को कहा कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के पदाधिकारियों ने अनेक स्थानों पर तकनीकी मुआयना किया है। इजरायली सेनाओं ने ब्लू लाइन के निकट अनेक स्थानों पर लेबनान से इसराइल की तरफ जाने वाली सुरंगों का पता लगाने का दावा किया था। जॉन पियर लेक्रॉ संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों के अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं। उनका कहना था कि लेबनान में शांति रक्षा मिशन के पदाधिकारी दोनों पक्षों यानी लेबनान और इसराइल के साथ इस मामले पर काम कर रहे हैं। इसमें ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई भी सुरंग जो प्रस्ताव संख्या 1701 का उल्लंघन करती है उसे सुरक्षित तरीके से और पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाए। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 2018 के दौरान कांगो गणराज्य में ऐसे करीब 50 लाख लोगों तक भोजन सहायता पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास जीवित रहने के लिए समुचित मात्रा में खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं था। एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि साल 2017 के दौरान इससे आधी संख्या तक खाद्य सहायता पहुँचाई जा सकी थी। ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमरीकी देशों द्वारा दी गई सहायता की बदौलत संभव हो सका है। एजेंसी का कहना है कि सहायता राशि में बढ़ोतरी की वजह से समस्याग्रस्त पूर्वी प्रांतों इतुरी तगान येका और उत्तरी व दक्षिणी कीवू में भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना संभव हो सका है। इन प्रांतों में भीषण संघर्ष जारी है जिसकी वजह से बहुत से लोगों का विस्थापन हुआ है और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले कसाई और कसाई मध्य प्रांतों में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सहायता राशि मुहैया कराने के कारण अकाल के हालात टालने में मदद मिली थी। इस सहायता के लिए बहुत से देशों ने खाने पीने के सामान और नकदी के रूप में मदद दी थी। इससे गंभीर कुपोषण को टालने में भारी सफलता मिली थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक कांगो गणराज्य में करीब 1,31,00,000 लोगों के पास जीवित रहने के लिए समुचित मात्रा में खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं है। करीब 46,00,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं। कांगो गणराज्य में साल 2018 के दौरान इबोला का 2 बार प्रकोप फैलने की वजह से जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सहायता सामग्री पहुंचाने में बाधा आई है। इस बीच अंगोला के उत्तरी इलाके से करीब 3,80,000 कांगोलीज नागरिकों को निकाल दिया गया है जो कसाई क्षेत्र में पहुंचे हैं। इस इलाके में पहले ही खाद्य असुरक्षा का माहौल है, यानी खाने पीने के सामान की भारी कमी है। कांगो गणराज्य के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक क्लाउड जिबेडर ने जरूरत की इस घड़ी में सहायता देने वाले देशों और संगठनों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम दानदाताओं की दरियादिली यूं ही जारी रहने की उम्मीद लगाए हुए है ताकि साल 2019 के दौरान भी चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती रहे। आप सुन रहे थे संयुक्त राष्ट्र समाचार। मैं हूँ विभूति शर्मा, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।